शिक्षा के आधार पर नारी के विविध रूप, पृष्ठ संख्या 114। हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार महानगर, नगर, कस्बा तथा गांव में क्रमशः उतरते क्रम में पाया जाता है। नारी शिक्षा में तो यह परिणाम और भी अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। महानगर तथा नगरों में नारी शिक्षा का जो प्रमाण और सुविधाएं हैं, उसकी तुलना में शहरों में वह निम्न से निम्नतम स्थिति में दृष्टिगत होते हैं। अतः ग्रामभित्तीय उपन्यासों में शिक्षित नारियों का परिणाम कम ही दृष्टिगत होता है और उसमें भी उच्चतर और उच्चतम शिक्षा प्राप्त नारियां बहुत ही कम परिमाण में मिलती हैं। हाँ, इधर स्वाधीनता के उपरांत गांव और कस्बों में हाई स्कूल के खुल जाने से पहले की तुलना में हाई स्कूल पास महिलाएं गांव में भी कहीं कहीं मिल जाती हैं। आलोच्य उपन्यास में नागार्जुन कृत उग्रतारा उपन्यास में नर्मदेश्वर की भाभी को शिक्षित बताया गया है। उसके कारण ही गांव के नवयुवकों में पुस्तकालय की प्रवृत्ति विकसित होती है और उसमें हिंदी की नई चेतना से संपन्न कुछ पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं। पृष्ठ संख्या 115। नर्मदेश्वर की भाभी के कारण गांव के युवक युवतियों में नव चेतना और नवजागरण के स्वर प्रस्फुटित होते हैं। उग्नी और कामेश्वर के विवाह के पीछे इसी नई चेतना की पृष्ठभूमि कारणभूत है। अन्यथा उग्नी एक विधवा थी और गांव के पुराने वातावरण के रहते वह अपने विवाह की सोच भी नहीं सकती थी। इस प्रकार नागार्जुन ने यहाँ प्रगतिवादी मूल्यों को संवारते हुए संकेतित किया है कि सच्चे अर्थों में शिक्षित ऐसी एक नारी गांव में नवजागृति का कितना बड़ा काम कर सकती है। पैराग्राफ चेंज। अलग अलग वैतरणी की कन्या, पटनहिया भाभी, जल टूटता हुआ की गीता और शारदा, सूखता हुआ तालाब की लीला और कलावती हाई स्कूल तक पढ़ी हुई लड़कियां हैं, जिनमें दीपा और कन्या, गीता और शारदा में तो शिक्षा के कुछ संस्कार हैं, परंतु कलावती और लीलावती कुसंगत में पढ़कर पथभ्रष्ट हो गई हैं और असमय ही शारीरिक संबंधों में रस लेने लगी हैं। राग दरबारी की बेला भी ऐसी ही एक अर्ध शिक्षित लड़की है जो अधिक समय तक कुंवारी स्थितियों को भोगने के लिए तैयार नहीं है। इदम नमामा की मंदा अधिक शिक्षित तो नहीं है, परंतु आधुनिक चेतना से संपन्न है। नदी फिर बह चली की पर्वतिया की भांति वह भी ग्रामीण उद्धार और सेवा के कार्य में लग जाती है। शिक्षित और समझदार नारी समाज में कितने गुणात्मक परिवर्तन ला सकती है, मंदा इसका उदाहरण है। आधा गाँव की सईदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करती है। उनके माँ बाप पहले तो नवाबी सामंती संस्कारों के कारण उसकी नौकरी को नापसंद करते हैं, परंतु जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद सईदा का वह नौकरी करना उन्हें मन ही मन अच्छा लगने लगता है। सूरज के आने तक की राधा की शिक्षा दीक्षा तो शहर में हुई है, परंतु उसका कार्य क्षेत्र ग्रामीण विस्तार है। उसमें अपनी शिक्षा को लेकर कोई घमंड नहीं है और गांव के भोले भाले लोगों के बीच वह सामंजस्य बढ़ा लेती है। पैराग्राफ चेंज। सांप और सीढ़ी की फूलमती ब्रैकेट में जैनी, मन की ब्रैकेट में एलिजाबेथ और मन की आदिवासी लड़कियां हैं, परंतु मिशनरी पादरियों के सहयोग से शिक्षा प्राप्त कर अच्छे स्थानों पर नौकरियां करने लगी हैं। मिशनरी के प्रभावों से धर्म परिवर्तन के कारण निम्न जाति की स्त्रियों में जो नवचेतना की लहर आई है, उसे यहाँ लक्षित किया जा सकता है। कालिंदी की कालिंदी यो तो मूलतः पहाड़ की है, परंतु उसके मामा शहर में रहते थे, अतः पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गई है। उसी प्रकार कैंजा उपन्यास की नंदी भी मूलतः गाँव की है। उसके पिता कुमाऊँ के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। पुत्री की कुंडली में पड़े हुए वैधव्य योग को लक्षित करते हुए वे पुत्री को शहर ले जाकर पढ़ाते हैं और अंततः वह डॉक्टर हो जाती है। जुलूस उपन्यास की तारा मस्तानी कॉलेज तक पढ़ी हुई है और गांव में शिक्षिका के पद पर कार्य करती है। उसी प्रकार दो सखियां की सखूबाई तथा तर्पण की पुष्पा भी शिक्षित महिलाएँ हैं और अध्यापन का कार्य करती हैं। एक टुकड़ा इतिहास की चनुली भी थोड़ी बहुत शिक्षित है और फलतः पति के ठुकरा दिए जाने पर राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के कार्य में जुट जाती है और चंडी देवी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नारी शिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां नारियां आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई हैं, वहां पुरानी जड़ता और मूढ़ता को तोड़ने में भी वे थोड़ी बहुत सफल हुई हैं। रूढ़ी चुस्त और रूढ़ी मुक्तता के आधार पर पृष्ठ संख्या 116। ग्रामीण परिवेश के उपन्यासों में जो नारी चरित्र उपलब्ध होते हैं उनमें बहुलांश उन नारियों का है जो पुरानी प्रगति विरोधी स्त्री विरोधी रूढ़ियों की जंजीरों से मुक्त हो पाई हैं। जल टूटता हुआ की जमना, उग्रतारा की उगनी की माँ, धरती धन्य अपना की जस्सो और प्रीतो, आधा गांव की प्राय सभी सैयद जातियाँ, हौलदार की खिमली भिमली और लक्ष्मा, कालिंदी की अन्नपूर्णा, 14 फेरे की कीक बसंती और सुब्रता ताई, दो सखियाँ की आनंदी, नच्यो बहुत गोपाल की कलावती और लीलावती, भैरवी की राजेश्वरी जैसी नारियाँ पुरानी रूढ़ियों की खोल से अभी बाहर नहीं आ पाई हैं। कहीं कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि कोई नारी पात्र ऊपरी दृष्टि से आधुनिक एवं रूढ़ी मुक्त लगे, परंतु भीतरी एवं वैचारिक दृष्टि से उसमें रूढ़ी चुस्तता पाई जाती है। भैरवी की राजेश्वरी इसी प्रकार की महिला है। अपनी लड़कियों के मोड फैशन का विरोध न करने वाली राजेश्वरी को अपनी फैशनेबल बहू आँख में कांटे की तरह खटकती है। सूखता हुआ तालाब की लीलावती और कलावती प्रेम करने के विषय में तो स्वतंत्र हैं, परंतु विवाह जैसे मामलों में वे रूढ़ी मुक्त नहीं हो पाई हैं। पैराग्राफ चेंज। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे तेजस्वी अली की नारी चरित्र मिलते हैं जिनमें रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़ फेंकने का साहस दृष्टिगत होता है। सूखता हुआ तालाब की चनैया, जल टूटता हुआ की बदमी और लवंगी, सूरज के आने तक की राधा, एक टुकड़ा इतिहास की चनूली, मकान दर मकान की बिजना डोमनी, दो सखियां की सखूबाई, धरती धन्ना अपना की ज्ञानो, सफ़ेद मेमने की सूरजा जाटनी, नागवल्लरी की गायत्री देवी, चौथी मुट्ठी की मोतीमा मस्तानी, नच्यो बहुत गोपाल की निर्गुण, एदम नममा की मंदा, प्रेमा और कुसुमा भाभी, उकाओ की श्यामा, आधा गांव की सईदा, सांप और सीढ़ी की फूलमती, कालिंदी की कालिंदी, नदी फिर बहचली की पर्वतिया, शमशान चंपा की चंपा, भैरवी की माया आदि ऐसी नारी चरित्र हैं जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर नारी विषयक परंपरागत सोच को धक्का सा दिया है और नए पदों का अन्वेषण किया है। निष्कर्ष पृष्ठ संख्या 116। प्रस्तुत अध्याय के समग्रावलोकन पर हम निम्नलिखित निष्पत्तियों तक सहजता से पहुंच सकते हैं। पहला, ग्राम भित्तीय उपन्यासों में उच्च वर्गीय स्त्रियों में जहां आर्थिक आदि समस्याओं का अभाव सा होता है वहां के परंपरागत दास्ता की शिकार है। निम्न वर्गीय नारियां जहां इस विषय में स्वतंत्र एवं उन्मुक्त हैं वहां दरिद्रता और विपन्नता के कारण उन्हें गांव के उच्च वर्गीय लोगों द्वारा जातीय शोषण का शिकार होना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 117। दूसरा, अलोच्य समयावधि में कुछ तो ऐसे उपन्यास आते हैं जिसमें पूर्ण रूपेण ग्रामीण परिवेश उपलब्ध होता है। ऐसे उपन्यासों में जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, राग दरबारी, सूखता हुआ तालाब, उग्र तारा, धरती धन्ना अपना, बबूल, कभी न छोड़े खेत, आधा गांव, हौलदार, एक मुट्ठी सरसों, एक टुकड़ा इतिहास, इदम नममा, लोक ऋण, नच्यो बहुत गोपाल जैसे उपन्यासों को परिगणित कर सकते हैं। तीसरा, आलोच्य समय सीमा में कुछ ऐसे भी उपन्यास हैं जिनमें ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का मिला जुला स्वरूप दृष्टिगत होता है। ऐसे उपन्यासों में नदी फिर बहचली, पानी के प्राचीर, कांच घर, इमरतिया, कालिंदी, सांप और सीढ़ी, चौथी मुट्ठी नागवल्लरी, भैरवी, सूरज के आने तक, 14 फेरे, काला जल, उकाव, दिल एक सादा कागज, सब ही नचावत राम गोसाई, अपने लोग, तमस, नरक कुंड में वास आदि उपन्यासों को रख सकते हैं। चौथा, ग्राम्भित्य उपन्यासों में पाए जाने वाले नारी के विविध रूपों का विश्लेषण 6 आधारों पर किया जा सकता है। पहला, अवस्था के आधार पर। दूसरा, जाति के आधार पर। तीसरा, वर्गगत आधार पर। चौथा, धर्मगत आधार पर। पांचवा, शिक्षा के आधार पर। छठवा, रूढ़ी चुस्त और रूढ़ी मुक्तता के आधार पर। पांचवा, अवस्था की दृष्टि से आलोच्य उपन्यासों में बालिकाएं, किशोरियां, युवतियां, प्रौढ़ाएं और वृद्धाएं आदि नारी रूप मिलते हैं, परंतु अपेक्षाकृत बालिकाओं या बच्चियों का चित्रण कम हुआ है। प्रायः उपन्यासों में एक ही नारी के किशोरी, युवती, प्रौढ़ा आदि रूप देखने को मिले हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर वृद्धाओं के जीवन में यंत्रणाओं का कुछ अभाव सा प्रतीत होता है। छठवां, प्रायः देखा गया है कि उच्च वर्गीय जातियों में नारियां अधिकांशतः रूढ़ी मुक्त नहीं हो पाई हैं। दासता की अर्गलाएं तोड़ने में वे सर्वथा असमर्थ रही हैं। दूसरी तरफ निम्न वर्गीय स्त्रियों में जीवट, जुझारूपन, संघर्षशीलता और समाज के स्थापित हितों से टकराने का साहस आदि मिलता है। सातवां, जहाँ नारी सच्चे स्वरूप में शिक्षित हुई है, वहाँ ग्रामीण जीवन में उनके द्वारा एक निश्चित परिवर्तन आया है। नगर की अपेक्षा अभी गाँव में स्त्री शिक्षा का प्रायः अभाव सा दिखता है। उसमें भी उच्चतम शिक्षा तो लगभग नहीं ही पाई गई है। कुछ उच्च जातीय संपन्न घरों की बेटियाँ ही डॉक्टर इत्यादि बन पाई हैं। आठवां, पुरानी पीढ़ी की स्त्रियों में प्रायः रूढ़ी चुस्तता तथा नई पीढ़ी की स्त्रियों में रूढ़ी मुक्तता के कुछ अभिलक्षण दृष्टिगत होते हैं। समाप्त।